आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। हाथरस भगदड़ मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया मुख्य आरोपी। न्यायिक जांच आयोग ने किया घटनास्थल का मुआयना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण। कहा शिक्षा सर्वांगीण विकास की आधारशिला। प्रदेश के साथ आसपास के 4 राज्य भी करेंगे कांवड़ यात्रा की निगरानी। यात्रा को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने की बैठक। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हाथरस भगदड़ के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के अलावा 2 अन्य सेवादारों को भी हाथरस से गिरफ्तार किया है। मामले में 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ के बाद हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि देव प्रकाश मधुकर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। पूछताछ में पता चला है कि कुछ समय पहले कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनसे संपर्क किया गया था, साथ ही इतने बड़े कार्यक्रम के लिए धनराशि इकट्ठा करने के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। इस बीच हाथरस मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम ने भी कल हाथरस पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। न्यायिक जांच आयोग की टीम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व आईएएस हेमंत राव और पूर्व आईपीएस भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। आयोग ने पुलिस लाइन्स में अधिकारियों के साथ बैठक की, इसके बाद घटनास्थल का मुआयना भी किया। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक के भवनों और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर किया जाने वाला खर्च समाज और देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अत्यंत उपयोगी होता है।
मेरा यह मानना है कि इन बच्चों पर किया जाने वाला जो भी खर्च है यह देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है और उस शिक्षा के लिए अगर सरकार के स्तर पर पहल होती है तो वह अच्छे परिणाम देता है। और आज समाज कल्याण विभाग ने यह प्रक्रिया एक नई सौगात गोरखपुर को इस रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार के बालक या बालिकाओं के आश्रम पद्धति के विद्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं।
गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने राप्ती नदी के मलौनी लहसड़ी तटबंध पर हुए बाढ़ बचाव के कार्यों का जायजा लिया। यहां उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार की कार्य योजना से प्रदेश में सभी तटबंध सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर सरकार ने 15 जून तक की समय सीमा तय की थी और अधिकांश कार्य इस समय सीमा के भीतर हो जाने से उसका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिलेगा। सीएम योगी ने टीपी नगर फ्लाईओवर और 6 लेन मार्ग के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो सड़क के किनारे बन रहे नालों की ऊंचाई पर विशेष ध्यान दें ताकि सड़क और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की समस्या न होने पाए। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दूसरे सत्र की शुरुआत 22 जुलाई को होगी। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 23 जुलाई को बजट भी पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आज प्रदेश के कई जनपदों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी। ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर बाद 2 बजे से 4:30 बजे तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गोरखपुर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 83 केंद्रों पर होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है। मंत्रालय ने कहा कि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार प्रदेश के साथ ही आसपास के चार राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान मिलकर निगरानी करेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार कल मेरठ पहुंचे। वहां उन्होंने आसपास के चार राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस बार की कांवड़ यात्रा देशभक्ति पर केंद्रित होगी। कांवड़ियों के हाथ में तिरंगा झंडा भी नजर आएगा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा, साथ ही उनकी संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा की तैयारियों में कमी को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए, उन मुद्दों पर काम किया जाए जिनके चलते पहले हादसे हो चुके हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि कांवड़ यात्रा की हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, साथ ही प्रदेश और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 8 संयुक्त कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। तैयारी बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी कांवड़ मार्गों की मरम्मत 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। मौसम साफ न होने के कारण मुहर्रम का चांद कल नहीं देखा जा सका। ऐसे में उलेमा ने ऐलान किया है कि कल 8 जुलाई से मुहर्रम की शुरुआत होगी। इसकी 10वीं तारीख 17 जुलाई को पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना होता है। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षक कल से टैबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से उन्हें विद्यालय खुलने और बंद होने दोनों समय उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बहराइच और लखीमपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी सहित अन्य जनपदों में रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उधर पीलीभीत में बारिश और उत्तराखंड के बनबसा बैराज से 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। प्रदेश से सटे पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश होने के चलते सीमावर्ती जिलों में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार के हिसाब से बाढ़ के लिहाज से सभी संवेदनशील नदियों के तटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी में वाल्मीकि बैराज से 3,00,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका पर खड्डा तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के चलते वहां की सरकार ने आज चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से ऋषिकेश से आगे की यात्रा प्रारंभ न करने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हाथरस भगदड़ मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया मुख्य आरोपी। न्यायिक जांच आयोग ने किया घटनास्थल का मुआयना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण। कहा शिक्षा सर्वांगीण विकास की आधारशिला। प्रदेश के साथ आसपास के चार राज्य भी करेंगे कांवड़ यात्रा की निगरानी। यात्रा को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने की बैठक। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।